તારીખ 31/12/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 537 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 22
537 परिषद के विषय में चर्चा चली है यहाँ पर और परिषद के काल में मनुष्य को कैसे परिणाम होने चाहिए दोनों बात किया है। कल जो बात चली अनेक प्रकार के परिसर हैं, मुनिराज को भी निग्रंथ मुनिराज को भी परिसर आता है। यहाँ पर उन परिसरों में से अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर की चर्चा चली है। अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर इसको कहते हैं कि अज्ञान के कारण से और मिथ्या श्रद्धान के कारण से अकुलाहट हो गए, इस प्रकार के अकुलाहट को यहाँ परिसर बोला है। ऐसा मुमुक्षु को होता है उस वक्त क्या करना कि विशेष रूप से सत्संग करना, सत्संग का आराधन करना, यही उपदेश दिया है। तो अनुक्रम से अज्ञान की निवृत्ति होगी। अज्ञान की निवृत्ति अनंत काल में नहीं हुई है, इसका मुख्य कारण यह है कि अज्ञान की निवृत्ति करने का निश्चय नहीं किया, जिसने निर्धार नहीं किया। अंतकरण से निर्धार करे कि मुझे मेरा अज्ञान मिटाना ही है, क्योंकि यह अज्ञान ही अनंत संसार का परिभ्रमण का कारण है। संसार का अनंत परिभ्रमण का कारण अज्ञान है, मोह है। उसको नाश करने का जो निश्चय करता है और निश्चय करने के बाद सत्संग की उपासना करता है, उसका अज्ञान टिक सकता नहीं। क्यों नहीं टिक सकता? कि अज्ञान को टिकने का कोई आधार नहीं मिलता, अज्ञान को टिकने का कोई आधार नहीं मिलता। लेकिन प्रारंभ में सबसे पहले निर्धार करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। हाँ, तो क्या अज्ञान मिटाना है, इसका मतलब है किसी कीमत पे भी मिटाना है, इसका मतलब वो होता है। उसमें मेरी कोई शर्त नहीं है। फिर भी कुछ समय तक अज्ञान चालू रहता है, वो पूर्व कर्म के कारण से रहता है, यानी पूर्व संस्कार के कारण से रहता है। पुरुषार्थ इतना तेज नहीं होता। उस समय में मुमुक्षु जीव को उस आकुलता को धैर्य से सहन करना, उस आकुलता को, आकुलता में क्यों आकुलता होती है ऐसा भी नहीं लेना, लेकिन धीरज रखना। मैंने आकुलता किसी को अच्छी नहीं लगती, आकुलता किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये आकुलता होनी नहीं चाहिए, वो अभिप्राय भी ठीक नहीं है। पर इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, तो फिर वहां से निकले ही नहीं, इन्फीरियरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या जल्दी जल्दी उसको मिटा दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो अपने क्रम से परिपक्व काल तक चालू रहे, ऐसी धीरज रहनी चाहिए। इसलिए यहाँ मार्गदर्शन इस प्रकार का दिया है कि अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर में जो आकुलता आती है वो परिभ्रमण की वेदना का ही एक अंग है, क्योंकि अज्ञान परिभ्रमण का कारण है। जिसको परिभ्रमण नहीं चाहिए उसको अज्ञान नहीं चाहिए, और अज्ञान जाता नहीं तो आकुलता होगी। आकुलता होगी उतना ही नहीं, आकुलता बढ़ेगी भी, उस वक्त सहन करना मुश्किल होता है। तीव्र आकुलता सहन नहीं होती जीव से, तो ये आकुलता मिट जाए ऐसी भावना भी होगी, ऐसा भाव भी हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं है ना, कि मेरी आकुलता होनी नहीं चाहिए, ये आकुलता हुई क्यों, कि मिट जाए, ऐसा नहीं होना। धैर्य से सहन करना, आने दो, होने दो, ये भी इस काल में जरूरी है। अनंत काल की आकुलता मिटाने के लिए ये आकुलता आई है। क्यों आई है? अनंत काल के दुख और अनंत काल की आकुलता मिटाने के लिए आकुलता आई है। तो अपने काल में आई, वो ठीक ही है, लेकिन वहां धीरज रखना, धैर्य से सहन कर लेना। लिखा है सहन नहीं होगा, भस्मो लगे मैंने सहन नहीं होगा। ऐसा परिसर का स्वरूप जानकर सत्संग एवं सत्पुरुष के योग से जो अज्ञान से आकुलता होती है वो निवृत्त होगी। कैसे होगी? उसका निवृत्ति का उपाय क्या है? सत्संग और सत्पुरुष का योग। ऐसा निश्चय कर, यथा उदय जानकर, ऐसा निश्चय करना सत्संग रखने का, और ये भी अपने काल में यथा उदय है, बराबर उदय है, यथा मैंने बराबर है अपने काल में, ऐसा जानकर धैर्य रखने का भगवान तीर्थंकर ने कहा है। तीर्थंकर देव को बीच में ले आते हैं कि तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि में भी इस प्रकार की बात आई है। परंतु यहां तक कल आए थे, परंतु वह धैर्य ऐसे अर्थ में नहीं कहा है कि सत्संग एवं सत्पुरुष का योग होने पर प्रमाद हेतु से विलंब करना, धैर्य का मतलब विलंब करना, वो भी नहीं है। कोई ऐसे इस प्रकार नहीं ले जाना धैर्य का अर्थ कि विलंब करना, वो अभिप्राय नहीं है। आकुलता नहीं होने का भी अभिप्राय नहीं और विलंब करने का भी अभिप्राय नहीं है। शायद वो चलेगी आकुलता, और सत्संग उस वक्त में सबसे अधिक बलवान रहेगा, सत्संग ही आधारभूत रहेगा। वह धैर्य है वो धैर्य है, विलंब करना ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, वह धैर्य है और उदय है, यह बात भी विचारवान जीव को स्मृति में रखना योग्य है। धीरे से सहन करना और ये अपने काल में ऐसा उदय आता है वो भी मुमुक्षु जीव को, विचारवान जीव को स्मरण में रखने योग्य है, भूलने योग्य नहीं है। हाँ, उदय जो आया है वो तो मिटेगा ही, और ऐसे आकुलता का उदय बीच में आए बिना नहीं रहता। सभी ज्ञानी पुरुष को भी मुमुक्षु की भूमिका में ऐसा हुआ है। श्री तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, तीर्थंकर, केवली, गणधर और बड़े बड़े आचार्यों ने, आदि में सब ले लेना, ज्ञानी पुरुषों ने जीवों को बार बार उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है वो नीचे कहेंगे। परंतु जीव दिग्मूढ़ रहना चाहता है, वहां उपाय नहीं चल सकता, उपदेश देने वाले का भी उपाय चलता नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। जहां जीव खुद ही नहीं करना चाहता है वहां उपदेश देने वाला क्या करेगा, वो खुद ही दिग्मूढ़ रहना चाहता है, मैंने दिशामूढ़ रहना चाहता है। सच्चा रास्ता प्रामाणिकता से, ईमानदारी से अज्ञान और मोह मिटाने का सच्चा उपाय करना नहीं चाहता है, संसार प्रिय लगता है उसको, तो वहां तो उपदेश देने वाले का भी कोई चलता नहीं है। पुनः पुनः ठोक ठोक कर कहा है, वजन दिया है, कहने वालों ने बार बार कहा है और वजन देकर कहा है कि एक यह जीव समझ ले तो सहज मोक्ष है, अगर जीव समझना चाहे तो मोक्ष कोई विशेष दूर नहीं है। समझे तो सहज मोक्ष है, मुक्ति होना सहज है, नहीं तो अनंत उपाय से भी नहीं है। क्या बात लिया, प्रामाणिकता से, शुद्ध अंतकरण से अपने को मुक्त होना ही है। ये संसार किसी कीमत पे हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। ये जन्म मरण का दुख और चारों गति का परिभ्रमण, 84 लाख प्रकार के उत्पन्न होना, मरना, उत्पन्न होना, मरना, एकांत दुख है, वो हमें नहीं चाहिए। इतना निर्धार कर ले, नींव में इतना निर्धार कर ले तो फिर मोक्ष होना विशेष बात नहीं है। इसके सिवा अनंत उपाय कर ले ऊपर ऊपर के, और करते भी है और हम लोगों ने किया भी है, धर्म साधन बहुत किया है अनेक प्रकार के, लेकिन अंतर में से संसार को छोड़ना नहीं चाहा तो ये सब साधन बेकार गए। और यह समझना भी कुछ विकट नहीं है, ये जो समझना है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है वही मात्र समझना है। भूल गया है मेरा मूल स्वरूप क्या है, वो जीव भूल गया है बस। जहां जहां जिस जिस पर्याय में उत्पन्न हुआ वहां वहां उस पर्याय रूप अपने को मान लिया। अभी मनुष्य हुआ तो मनुष्य मान लिया, गृहस्थ हुआ तो गृहस्थ मान लिया, जैसा उदय आया, त्याग का उदय आया तो त्यागी मान लिया, जैसा जैसा उदय आया वैसा मान लिया, मैं ऐसा ही हूं। मूल स्वरूप मेरा कैसा है वो कभी समझ में नहीं आया और समझ में लिया भी नहीं है। तो अपना मूल स्वरूप ही समझना है और वह कुछ दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है कि कदाचित वह छिपा ले या न बताए कि जिससे समझ में नहीं आए, तो अपना स्वरूप है समझने का। दूसरे की बात छिपावे तो समझ में नहीं आए, लेकिन अपना स्वरूप की बात कैसे समझ में नहीं आएगी? नथी आवी एनु कारण छे के समझवाने पण पूरे पूते दरकार करी नथी, एटले नथी आवी। नियत है, दानत जिसको बोलते हैं, दानत नियत अच्छी नहीं रही, यही कारण है। बहुभाग तो धर्म के क्षेत्र में जाकर के जीव ने संसार को ही चाहा है, संसार ने चाहना थे धर्म के रस, कल बात चाली थी ना देव देवलानी बदी, फलानी देवी ने, फलाना देव ने, फलानी देवी, एमां हूँ थे कि मारे संसार ने वाड़ी लीली रिये, तो संसार ने जीछो छे तो संसार क्या थे मटे? संसार को ही चाहा है तो संसार मिटेगा कहाँ से? और कभी जैन हुआ, जिन मंदिर में गया तो वहां भी वही चाहना किया है, हे शांतिनाथ भगवान मेरी शांति करो, हे पार्श्वनाथ भगवान मेरी प्रतिकूलता को दूर करो, वहां भी वही चाहना किया है।
जैन मंदिर जैन देखा तो नहीं, वैष्णव जो देखा है,
हाँ,
न यक्षो न माता न अंबिका न वही पशु रास न गरबा न डोंडिया न रास न रात जगत जन मंदिर जैन नु ना लागे श्रृंगार नु लागे।
वही क्या है कि वैष्णव में मंदिर में
लगतो नहीं, हमने तो जैन नु मंदिर तो वैष्णव ना जेव लागे,
हाँ, इन कारण के जे वैष्णव में श्रृंगार करियो लोको बहु गया, संख्या वधी गई, यानी कोने वैष्णव वधी जैनो विष्णु थवा मिला, केम के एक तो जीव ने श्रृंगार प्रिय है पर मंदिर में भी भगवान को श्रृंगार होने लगा, लोग जाने लगे, तो जैनियों ने ये सोचा कि ये तो अपने घर अपने दुकानदारी बंद हो जाएगी, मंदिर नहीं था दुकान थी,
चोरों ने विषयों ने आकर्षण था वहां मंदिरों से દેખાય છે।
ऐसा हो जाता है,
एक
तो लोगों को वो प्रिय है और मंदिर की दुकान बना करके ऐसा ही लोगों को आकर्षण हो ऐसा करने लग गए, चला वो ज्यादा चलेगा क्या? इस जमाने में प्रमाणिकता वाले का कम चलेगा और अप्रमाणिकता वाले का ज्यादा चलेगा, क्योंकि वो दिखाओ सब ऐसा ही होगा, ये बात है।
तो हमेशा ऐसे ही चलता रहने वाला, ज्ञानियों की संख्या तो हमेशा ज्यादा रहनी
है, वो तो ऐसे ही समोसरण में भी अज्ञानी की संख्या ज्यादा थी, ज्ञानियों की संख्या कम थी, मुनियों की संख्या इससे भी कम थी और केवल ज्ञानियों की संख्या इससे भी कम थी, वो तो हर हमेशा जो चीज अच्छी है, मूल्यवान है, उसका परिमाण, उसकी संख्या हमेशा कम रहेगी, मूल्यवान चीज कम मिलेगी। जितनी सब्जी तरकारी मिलती है, मार्केट लगी है, उतना सोना मिलता है क्या? नहीं, नहीं। और जितना सोना है उतना हीरा मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। लोहे से चांदी कम मिलेगी, चांदी से सोना कम मिलेगा, और सोना से हीरा कम मिलेगा।
जितना कम मिलता है उसका मूल्य उतना,
और जितना कम मिलता है लेकिन मूल्य इसका ज्यादा है, मिलता है कम लेकिन मूल्य उसका ज्यादा है। यह हमेशा के लिए तीनों काल में संसार की परिस्थिति है। अपने को तो अपने आप को संभालना है, बाकी तो संसार ऐसे ही तीनों काल चलने वाला है। वो संसार है, इसी तरह से तीनों काल चलने वाला है, ऐसा जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने ज्ञान में देख लिया है। अपने से आप गुप्त रहना किस तरह हो सकता है, प्रश्न उठाया। अगर तुम अपना मूल स्वरूप की खोज करेगा, जानना चाहे और अंतर खोज करे, गुप्त नहीं रह सकता। ये बात कृपालु देव ने अपने अनुभव से कही है, बहुत प्रेरणास्पद बात है। क्या कि अगर किसी को, बात तो वो रही ना कि अपना स्वरूप नहीं समझा इसलिए परिभ्रमण हुआ, तो मूल स्वरूप को समझा नहीं, जो भी पर्याय हुई उसको ही अपना स्वरूप समझ लिया और परिभ्रमण करता रहा। तो जिसको अपना मूल स्वरूप समझना है उसको ये बात गुप्त रहने वाली। कितनी अच्छी बात किया है, अनादि से अनजाना रहा है, क्योंकि उसने वो निश्चय नहीं किया कभी कि मुझे मेरा स्वरूप कैसा है वो समझना है, वो प्रयास शुद्ध अंतःकरण से नहीं किया। कुछ न कुछ दृष्टि मलिन रही और गड़बड़ रह गई। वो तो भान होने के बाद, यहाँ तो इसके पहले जो अनजाना है, जिसको स्वरूप समझना है, उसको गुप्त नहीं रह सकता, स्वरूप अपना गुप्त नहीं रह सकता। गुप्त क्यों रहता है अभी वो बात क्या है, परंतु करके कि क्यों गुप्त रहा, फिर भी अनंत काल तक क्यों हमने हमारे स्वरूप को नहीं जाना और परिभ्रमण से क्यों नहीं छूटे? क्योंकि स्वप्न दशा में जैसे न होने योग्य ऐसी अपनी मृत्यु को भी जीव देखता है, वैसे ही अज्ञान दशा रूप स्वप्न रूप योग से यह जीव अपने को, जो अपने नहीं है, वैसे दूसरे द्रव्यों में निज रूप से मानता है। ये गलती किया। क्या गलती किया? स्वप्न जैसी गलती किया। स्वप्न जितना झूठ है उतने ही संसार के सभी संबंध झूठ है।
बहुत सरस, बहुत सरस।
जैसे कोई स्वप्न में से जागृत होता है तो मालूम पड़ जाता है, मैं तो जहाँ सोया हूँ वहीं हूँ, जितना भी देखा वो सब झूठ था, मैं अकेला सो रहा हूँ, कोई है ही नहीं। स्वप्न में हजारों लोग को देखे, कुछ खुशी हुई, कुछ नाखुशी हुई, कभी भूखा हुआ, कभी खा लिया, सब कुछ किया स्वप्न में। वो भूख भी झूठी थी और खाया भी वो झूठा ही था। जागृत हुआ तो मालूम हो गया ना। ऐसे अज्ञान दशा है वो स्वप्न जैसे दशा है। जैसे हम अगले भोग में शरीर त्याग किया, शरीर का वियोग हुआ ना, तो उस वक्त हमने हमारे मृत्यु का अनुभव किया। वाकई मर गए होते तो अभी कहां से होते मौजूद। वाकई पूर्व भवर में मर गए होते तो अभी मौजूद कहां से होते। तो ये मृत्यु भी एक स्वप्न था और क्या है। जैसे स्वप्न झूठ है वैसे मृत्यु भी झूठ है। मेरी मृत्यु नहीं हुई है। जब ये जीवन मृत्यु भी स्वप्नवत है शाश्वत जीव को, तो दूसरे संबंध तो स्वप्नवत है ही। परिवार में से कोई एक जीव चला जाता है तो सपना जैसा हो गया कि नहीं, कुछ काल तक साथ में रहे, क्या हुआ, स्वप्न पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ अवशेष तो रहता नहीं, बात खत्म। खुद की मृत्यु भी क्या भी ऐसा है, दूसरे का भी ऐसा ही है। स्वप्न में जैसे झूठ को सच मानता है, वैसे इधर जहां अपना अस्तित्व नहीं है ऐसे अन्य द्रव्य में निज रूप से मान लेता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये घर वाले मेरे हैं, ये पड़ोस वाले मेरे नहीं है, ये गड़बड़ हो गई। ऐसा होने से अपना मूल स्वरूप मालूम नहीं पड़ता। जो त्रिकाल असंग तत्व है उसको संग वाला मान लिया तो असंग तत्व समझ में नहीं आया। ये बात हुई है। अपने से अपने आप गुप्त नहीं रह सकता है, परंतु जैसे स्वप्न दशा में न होने योग्य ऐसी अपनी मृत्यु को भी जीव देखता है। बहुत एक अच्छा स्वप्न का भी अच्छा ढंग लिया है। जागृत अवस्था में कोई मरता है वो अपनी मृत्यु को देख नहीं सकता, कैसे मरता हूँ मैं और फिर मेरे शरीर की क्या क्या अंतिम संस्कार किया जाता है, मृत्यु होने से क्या होता है वो कोई खुद नहीं देख सकता, क्योंकि खुद का वहाँ अस्तित्व नहीं होता, तो चला जाता है। लेकिन स्वप्न में वो देखने को मिलता है कि देखो मैं मर गया, अब लोगों को बुलाया गया, सब रोने लगे मेरे लिए, सब रोने लगे, फिर मेरे को बांधा, फिर मेरे को ले जा रहे हैं, फिर मेरे को जला रहे हैं। सपने में सब देखेगा, सब रो रहे हैं, मेरे घर वाले सब रो रहे हैं। कोई जागृत अवस्था में पॉसिबल है क्या? नहीं, सपने में देखेगा। वो जितना झूठ है उतना ही, जो अपने नहीं है ऐसे परद्रव्य में अपनत्व करना उतना ही झूठ है, और वही परिभ्रमण का कारण है। यही परिभ्रमण का कारण है। जहां अपना अस्तित्व नहीं, मौजूदगी नहीं, वहां अपना तो तुम कैसे करते हो? बस उतनी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। अपनी मौजूदगी नहीं है, ऐसे अन्य पदार्थ में अपनत्व उनका अनुभव होना, यही अज्ञान है और यही परिभ्रमण का कारण है, और कोई बात नहीं है। अज्ञान में दूसरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि शास्त्र के अर्थ नहीं आते हैं, भाषा नहीं समझते हैं, व्याकरण नहीं समझते हैं, संस्कृत नहीं आता है, मागधी नहीं आता है, वो बात नहीं। तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, मौजूदगी नहीं है, वहां तो अपनत्व क्यों करता है, धोखा क्यों खाता है, तेरा अस्तित्व तो है ही नहीं। अज्ञान घर कर गया, अज्ञान रूपी रोग है, मोह और अज्ञान जीव के रोग है, क्रॉनिक रोग हो गया। क्या लंबा काल रहने से रोग ने घर कर लिया, जमा लिया अपना अड्डा, ये बात हो गई है। फिर भी जिसको ये रोग मिटाना है उसको चुटकी बजाने का काम है, मिटाना है उसको। ये खुद छुटना नहीं चाहे तो तीर्थंकर भी उसको छुड़ा सकते, जिसको छुटना है उनके लिए कोई बात नहीं। छूटने वाले को जगत में कोई ताकत बांध सकती, कोई ताकत ही नहीं है जगत। अपने को जो अपने नहीं है ऐसे दूसरे द्रव्य में निज रूप से मानता है, और यही मान्यता संसार है, कोई परिभ्रमण तो इसका फल है, यही मान्यता संसार है, यही अज्ञान है। नरक आदि गति का हेतु यही है, जीव नरक निगोद में क्यों जाता है, ऊपर में अपनत्व करके जाता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। यही जन्म है, यही मरण है, जन्म मरण का कारण भी यही है, और यही देह है, शरीर मिलने का कारण, नया नया शरीर का संयोग होने का कारण भी वही है। वही देह का विकार है, देह का रोग होने का कारण भी यही है। देखो देह का विकार मैंने शरीर रोग, वो इसी कारण से असाता बनता है, ऐसे मैं शरीर वाला और मुझे भूख लगती है, शरीर वाला हूं तो क्या है, मुझे भूख लगती है। अगर मैं अच्छा अच्छे चीज खाऊंगा, शरीर को पुष्टि मिले ऐसा खाना पीना रखूंगा, हाँ तो मेरी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, मेरी साता बढ़ेगी। ये परिणाम से वेदनी कर्म कौन सा बनेगा, असाता वेदनी बनेगी, रोग आएगा। होम्योपैथी साइंस है वो फीलिंग को बहुत मानता है, फीलिंग सिम्टम से वो ट्रीटमेंट करता है, सेंसेशन बॉडी का सेंसेशन की बात है, वहाँ हजारों सेंसेशन के वो लोग चर्चा करते हैं। एक किताब लिखी थी 10,000 सेंसेशन ऑफ द बॉडी, कितने 10,000, उस पर से कौन सी दवाई लागू होनी चाहिए वो रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन वो साइंस के मूल में लिखा है कि जीव को रोग होने का मूल कारण क्या है, कि रस लेकर खाना वही जीव को रोग होने का कारण है। क्या रस लेकर खाना, जितना तीव्र रस से कोई खाएगा उतना तीव्र असाता वेदनी का कर्म बंद होएगा, ये जैन शास्त्र बोलता है, उधर होम्योपैथ बोलता है, ये जैन शास्त्र बोलता है। इसलिए खाते वक्त आंख मीच लेना, रस नहीं खाना है। क्या खाया क्या नहीं खाया हमको पता नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मा इस शरीर में रह करके सफर करती है, इधर उधर जाते हैं ना चल कर। तो जिसमें हम सफर करते हैं उसको किराया देना पड़ता है, जैसे ट्रेन में प्लेन में जाते हैं तो कार में किराया देना पड़ता है कि नहीं, तो इसको किराया दे देना है। क्या है ये खाना पीना, क्या है किराया है, टैक्सी भाड़ा दे देना, टाइम पर हुआ थोड़ा डाल दिया, वो भी इलास्टिक है। कैसा है, ज्यादा खाओगे ज्यादा खाने की आदत हो जाएगी, कम खाओगे कम खाने की आदत हो जाएगी। वो कोठरी है ना होदरी, वो इलास्टिक है, उसको 10 रोटी देंगे वो 10 मांगेगा, 11 मांगेगा, 4 रोटी 3 रोटी खाओगे तो 3-4 रोटी में भी पेट भरता है। किराया दे देना प्रामाणिकता से, तुम्हारे में निवास किया है तो भाड़ा ले लो अपना। लेकिन ऐसी नोट चाहिए, वो बात कहाँ से आई है? भाड़ा तो नोट करेंसी से देना होता है। अब टैक्सी वाले को नई नोट दो या पुराने दो क्या फर्क पड़ता है, 10 रुपया की नई नोट से कोई 10.25 देता है क्या, 10.25 का हिसाब होता है क्या, पर पुराने से कोई 10.25 का हिसाब होता है क्या? तो फिर ऐसा खाना वैसा खाना ये बात क्यों, हमको दूध चाहिए घी चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। सादगी से खा लो थोड़ा बहुत, किराया दे दो बात खत्म। लेकिन हम दो बात का ज्यादा ध्यान रखते हैं, एक तो ऐसी चीज खाना जिससे शरीर बराबर ताकत वाला रहे और एक अच्छा स्वाद मिले, टेस्ट भी अच्छा और टेस्ट और पुष्टि भी मिले, दोनों बात को हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो किराया देने वाली बात भूल जाते हैं, ये मात्र किराया देने की बात है। एक में मिर्च कम और एक में मिर्च और गुड़ और एक में मिर्च और बिना गुड़।
तो पहले से टेव पाड़ी दीदी से तो लाकड़ो खास पर जीव
लाकड़ा निकल नहीं,
पहले से टेव पाड़ी दीदी लाकड़ो खाई ने जीव
लाकड़ो खाई ने जीव, पहले से टेव पाड़ी हो तो लाकड़ो खाई ने जीव है।
बड़ी मसाला है हां हां, चस्को लगे नहीं छूटतो।
अच्छी बात, चस्को लगी क्यों? ऐसा ही बात है, जैसे नमक को सब रस कहते हैं, इसके बिना खाना नहीं बनाते अपन। लेकिन जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं तो ज्यादा ही उसको चाहिए, कम खाते उसको कम चाहिए और नहीं खाते उसको नहीं चाहिए, ऐसा होता है। कम खाने वाले को ज्यादा नमक वाले रसोई पसंद नहीं आएगी और ज्यादा नमक खाने वाले को कम नमक वाली रसोई फीकी लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? आदत होगी, जैसे आदत बनती है वैसा हो जाता है। वास्तविकता नहीं देखते कि भाई ये किराया देने की बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, गुड़ डाला कि नहीं डाला, डाला तो भी भले डाला, नहीं डाला तो भी
भले डाला,
भले नहीं डाला, जैसा आए वैसा खा लो। परीक्षा अनुसार ही होगा। हाँ। चल सकता है, वो बेचारा उतना आग्रह वाला नहीं है, ये क्यों नहीं दिया, एक दिन चला लेता है, लंबी छोड़ी बात कि तुमने इतने दिन खिलाए तो एक दिन नहीं खिलाएगा तो क्या हो गया, चलो एक दिन फ्री मुसाफरी फ्री सफर चला लेता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हमको रस से खाना है और बीमार नहीं होना है, दो बात बनने वाली नहीं, कभी नहीं बनेगी। जो रस से खाएगा वो नियम से बीमार होएगा होएगा होएगा।
सारी गड़बड़ मन से होती है
और क्या है, कल्पना से, मन क्या कल्पना, यही देह के विकार है वो लिया है वहां से, कल्पना बनाए ना मैं मनुष्य, मुझे इतना खाना तो होना ही, ये सब मुझे होना ही, तो ये रोग का कारण हुआ। यही पुत्र है, यही पिता है, पिता पुत्र की कल्पना भी यहाँ से हुई, अपने स्वरूप को भूल गया तो मैं पिता पुत्र की कल्पना कर लिया। यही पिता पुत्र शत्रु मित्र आदि भाव कल्पना का हेतु है, क्या परद्रव्य में अपनत्व किया वो, दूसरे द्रव्य में अपनापन किया तो फिर संबंध जुड़ेगा, इसके साथ मेरा ऐसा, इसके साथ मेरा ये संबंध, इसके साथ मेरा ये संबंध। वास्तविक रूप से देखें तो कोई किसी का पुत्र पिता हो ही सकता, क्योंकि नया जीव कोई उत्पन्न नहीं होता, कोई नया जीव तो उत्पन्न वो तो परिभ्रमण करता है, तो एक जगह से क्षेत्रांतर करके दूसरी जगह आ जाता है और अपने कारण से आता है, आता है वो भी अपने कारण से, अपने कर्म भोगने के हिसाब से आ जाता है। ते ते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, सभी कर्म भोगने का स्थान है विश्व में, पुण्य के पाप के सब प्रकार के कर्म भोगने का स्थान है, वहां जीव की गति हो जाती है स्वयं, उसको कोई लाना ले जाने का किसी के जुम्मे रहता नहीं है, अपने आप चला जाता है, यहाँ देह छूटा चला गया, एक सेकंड में लाखों योजन का सफर कर लेता है, हिसाब नहीं है इसका। और जहां उसकी निवृत्ति हुई वहां सहज मोक्ष है। किसकी निवृत्ति हुई, ये मेरे हैं, ये कल्पना का नाश हुआ, निवृत्ति मैंने नाश हुआ, सहज मोक्ष है, ये कोई बंधन तुमको नहीं है। बंधन तो कहां तक है कि जहां तक संबंध है वहां तक बंध है, संबंध है वहां तक बंध है, वस्तु स्वरूप को समझ लो तेरी आत्मा के लिए है, ये वस्तु का स्वरूप है, मानो तो भी ये ऐसा है, नहीं मानो तो भी ऐसा ही है, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता। आत्मा को संसारी गृहस्थी संबंध वाला मानने से वो आत्मा मिट नहीं जाता, वो तो असंग तत्व ही रहता है, लेकिन मान मान कर जीव दुखी होता है, पर जैसा है वैसा मान लिया, मोक्ष सहज ही है, कोई आपत्ति नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। तो ऐसी मान्यता की निवृत्ति हुई, ज्ञान की निवृत्ति हुई तो मोक्ष सहज है, और ऐसी निवृत्ति के लिए सत्संग सत्पुरुष आदि साधन कहें, ये सत्संग इसलिए है, पर मैं अपनापन मिटा दो बस, उसके लिए सत्संग है। तो फिर क्या घर में नहीं रहना, वो बात नहीं है, तुम मानता क्या है जानता क्या है वो बात है। पूर्व कर्म के योग से कहीं न कहीं जीव आया तो है, कोई भी परिवार में तो आया ही है, तो समझ ले कि अपना कर्म भोगने के लिए आया हूं, लेकिन मैं यहां आकर के जिस लगाव में पड़ जाता हूं, ये मेरे वो मेरे वो मेरे, ये नया संसार को खड़ा कर देगा, परिभ्रम को खड़ा कर देगा।
गुरुदेव कहता था भाई श्री, एक आयो थोर माथी ने, एक आयो बोर माथी ने, पप्पा मम्मी के ने चौंटी पड़े संसार चालू थी गया था।
थोर मैंने वो थोर होते हैं ना,
कैक्टस
हैं,
कैक्टस
किसका कहते हैं,
कांटेदार
खेतर को बाड़ी बाड़ बाड़ होती है ना,
बॉर्डर बॉर्डर बनाते हैं,
खेत
को बॉर्डर जो
कांटा वाले कांट जैसे होते हैं, तो एक जीव आया उसमें से अपने परिवार में, और एक आया मोर में से, मैंने फूल में से आया, मोर मैंने फूल में से आया, एक थोर में से आया, एक मोर में से आया, पकड़ लिया ये मेरा वो मेरा वो मेरा। इतना राग कर लेता है, उतना राग कर लेता है, तीव्र राग कर लेता है। देखो राग कैसा जीव करता है, कि जब पेट में बच्चा होता है वहां से राग चालू कर देता है, अब मेरे घर में कोई आएगा, मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा, वहां से जन्म लेता है, वहां से इतना राग से देखता है कैसा है कैसा है, नक्शिक उसका चेहरा मोरा सब, अपना अपनापन करके देखना, इतना रस लेता है जीव, अपनापन में जितना रस आता है उतना जहर खाता है, जितना अपनापन में रस आता है उतना जहर खाता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है उतना उतना रस उसका बढ़ता है, आज तो बैठने लगा, फिर बोलने लगा, फिर खाने लगा, फिर चलने लगा, फिर ऐसा करना, स्कूल में जाने लगा, वो करने लगा, वो बस उसका तो स्वयं उसका कर्म के कारण से सब होता है, खाना पीना बोलना चलना सब, लेकिन उसको यहाँ उसका उत्साह की डिग्री बढ़ जाती है, उसका अपनत्व की डिग्री बढ़ जाती है, उतना जहर ज्यादा खाता है, उसकी परिणति बन जाती है। फिर सत्संग में आता है, तो सत्संग में तो ये मिलता है कि तुझे तेरे नहीं है, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन घर जाता है तो मेरा 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 चालू जाता है। तो ये जो मेरापन की परिणति है बन गई है, तो वहां मेरा मेरा चालू हो गया, तो वो परिणति तोड़ने के लिए सत्संग है, वो सत्संग से इस परिणति को तोड़े तब तो मोक्ष मार्ग की लाइन मिले। तो परिणति वैसी के वैसे रह जाए तो ये सत्संग भी बेकार जाएगा। तो ज्ञानी कहते हैं कि तुम अपनी परिणति बनाओ, उल्टी परिणति को तोड़ करके सुलटी परिणति बनाओ, तब तो तुम्हारा काम होगा मुक्ति का, लेकिन परिणति चाहिए, ऐसे हाँ भरने से नहीं चलेगा, ठीक है बात तो सही है, बात तो ठीक है सही है, वैसे नहीं चलेगा, परिणति चाहिए। जैसे मैं अपनापन करके परिणति बना ली है तो ये उपदेश का असर नहीं होता है। तो ऐसा रस ले लो कि जैसे वो अपनत्व की परिणति टूट जाए, मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा, वो पूरी लाइन मिल जाएगी मुक्त होने के लिए और हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा।
मानव प्रेम क्या चाहे भाई, मानव प्रेम क्या चाहे,
ऐसे में कल्पना है, न कोई बेटा है न कोई माँ है, दोनों जीव हैं, लेकिन जैसे कर्मजनित अवस्था हुई माँ बेटा, वो तो कर्म संबंध है। माँ बेटा का संबंध क्या है, कोई भी संबंध संसार का है, वो तो कर्म संबंध है, वो तो आत्मा का धर्म संबंध नहीं है, कर्म प्रसंग है, वो प्रसंग भी कर्म का है, वहां वो धर्म प्रसंग नहीं है। तो कर्म को कर्म जानो, धर्म को धर्म जानो, कर्म धर्म एक हो सकता।
आत्मज्ञानी मदद हो बीजो करे,
जैसे कोई वो क्या बोलते है? रखते हैं ना बच्चे को उछेर करने के,
आया
आया
दाई माँ,
हाँ आया की तरह वो रहते हैं। सम्यक दृष्टि स्त्री माता होती है तो अपने बच्चे को धाव माता की तरह पालन पोषण करती है। पराई माँ क्या, असली माँ नहीं बनती, वो असली माँ बनती है, नकली माँ बन जाती है, नकली बन जा, ये भी संबंध है, संबंध का नकल कर लो, असल मत मानो, असल है ही नहीं, वास्तव में असल है ही नहीं, नकल करो, नकल करने की छूट है। जहां तक तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा उपड़े नहीं, पूरा स्थिरता नहीं आवे, वहां तक नकल करो, लेकिन असल में, असल में तो पहले मान्यता से तो फिर स्थिरता आएगी नहीं, स्थिरता आती है तो सर्वसंग परित्याग करके निकल जाता है जंगल में, वो निराश हो जाता है, क्योंकि स्थिरता आ गई उस मान्यता में, लेकिन माना और स्थिर नहीं रह सकता है तो नकल कर। नहीं इसमें क्या है, तुम भी छोकरा नकल हो जाओ ना, अच्छा छोकरा क्यों रहते, तुम असल छोकरा क्यों रहते, तुम भी नकल हो जाओ, बात खत्म। ये तो व्यवहार है, नौकर काम करता है और पैसा लेता है, मजदूर मजदूरी करता है और पैसा लेता है, बात खत्म, संबंध काय का, स्वार्थ का तो संबंध है, संबंध किसका संसार में, संबंध किस बात का है, स्वार्थ का तो है ही, वैसे ही स्वार्थ का संबंध है और क्या है। संसारियों से तो विपरीत है, अपने परिवार से स्नेह नहीं करना वो पागलपन की बात लगेगी, संसार में ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन ये संसार से मुक्त होने की बात है, संसार में रहने की बात नहीं है। अनंत परिवार मिले, अनंत बार उस परिवार से स्नेह किया, अनंत बार अधोगति में गया, क्या फायदा हुआ, दुखी हुआ है। अब छूटना है इसके लिए बात है, नहीं छूटना है इसके लिए तो बात
नहीं। शब्द
स्नेह निवृत्ति करना, वो निस्नेह तो ऐसे अज्ञान की निवृत्ति के लिए सत्संग सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, और वे साधन भी यदि जीव अपने पुरुषार्थ को छिपाए बिना उसमें लगाए तभी सिद्ध होते हैं, ऊपर ऊपर से सुन लेने से कोई नहीं होगा, अपना पुरुषार्थ नहीं छिपाना, पूरा पुरुषार्थ पूरा उद्यम से पूरी ताकत से काम लेना है। अधिक क्या कहें, इतनी संक्षिप्त बात यदि जीव में परिणमित हो जाए, परिणति हो जाए उसके अपनत्व छोड़ने का, तो उस जीव ने सर्व व्रत यम नियम तप यात्रा भक्ति शास्त्र ज्ञान सब कर दिया, सब कर चुका, वो उसमें कुछ संशय नहीं है। देखो एक अपनत्व छोड़ा तो शास्त्र ज्ञान करने की जरूरत, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, व्रत नियम की कोई जरूरत नहीं, यात्रा की भी जरूरत नहीं, दयादान की कोई जरूरत नहीं, अपनत्व छोड़, पुरुषार्थ लगाना है तो उसमें लगा, व्रत नियम में के यात्रा में पुरुषार्थ नहीं लगाना है, शास्त्र में पुरुषार्थ नहीं लगाना है, अपनत्व छोड़ने में पुरुषार्थ लगाना है।
भक्ति का शब्द
भक्ति भी आ गया, सब साधन लिया है,
भक्ति भी छोड़ लिया,
भक्ति में पुरुषार्थ नहीं लगा, अपना तो छोड़ने में पुरुषार्थ लगा। जहां जहां अपनत्व का अनुभव होता है वहां जीव धोखा खाता है।
सत्पुरुष में अपनत्व
लगे, जहां अपनत्व लगे वहां सामने रख करके प्रयोग करो कि पराये हैं मेरे क्यों लगते हैं, पराये हैं मेरे क्यों लगते हैं, लड़ाई करो, अपनी झूठी मान्यता से लड़ाई करो, ये बात है।
वैसे यहाँ तो बैठे एकदम चार्ज होता कि ये घर जाके डिस्चार्ज हो जाए फिर क्या करें,
परिणति वो बन गई है, परिणति वो बन गई है तो ऐसा ही होगा। अभी तो परिणति बनाना है, रस लेकर के परिणति, भावना से परिणति बनती है, परिणति बना लेना है।
जहाँ बैठे चार्ज है वही रहना चाहिए,
क्या जरूरत है, चलो
एकदम सही है।
सुख धाम